الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर हम सूरह मायदा की तफसीर पढ़ते हैं। हमारी रेफरेंस बुक जो है वो मारिफुल कुरान मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह की, और उसकी जिल्द नंबर 3 है। सूरह मायदा की जो अभी आयात तिलावत की गई वो 13 और 14 आयात हैं। इनके हमने तर्जुमा और खुलासा तफसीर पढ़ के मुकम्मल कर लिया था पिछली क्लास में, और आज पेज नंबर 82 से हम इसके मारुफ व मसाइल पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो मेरे सामने असल में वो स्क्रीन शेयर वाली नहीं है, लेकिन उम्मीद है आपके सामने वो स्क्रीन शेयर होगी, मारुफ व मसाइल जिसके ऊपर हैं। तो इसमें हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह इनके मारिफ यानी जो आरिफाना बातें इन आयात के अंदर उलमा को नजर आई या इनको खुद नजर आई, वो और कोई शरई मसाइल, ठीक है, यानी मसाइल किसको कहते हैं, वो चीजें जिनके बारे में एक सवाल होता है कि भाई ये काम कैसे होता है, दीन में ये काम कैसे किया जाता है। तो ये जो कैसे वाले वाला क्वेश्चन है ना, हाउ वाला क्वेश्चन, तो उसको फिर मसाइल कहा जाता है। तो अगर इन आयात से कोई शरई मसाइल निकलते हैं तो वो भी मारिफ व मसाइल की हेडिंग में ही मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं। तो फरमाते हैं कि इस आयत के इन आयत में, बल्कि आयत में ये बताया गया है कि नबी के बनी इसराइल ने, बनी इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद जो थी वो बनी इसराइल कहलाती है, क्योंकि उनका दूसरा नाम इसराइल भी था। तो बनी इसराइल ने अपनी बदबख्ती से इन वाज़ह हिदायात पर कान न धरे और मीसाक की मुखालफत करी, क्योंकि इससे पीछे जो आयात थी तो उनमें मीसाक का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया था कि वलकद अखदुल्लाहु मीसाक बनी इसराइल, के तहकीक अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ एक से एक अहद लिया, एक वादा लिया, ठीक है। वादा कैसे लेता है, अल्लाह ताला अपने नबी के वास्ते से लेता है कि तुम लोग ये वादा करो अल्लाह ताला के साथ, ठीक है। तो इन्होंने उस वादे का लिहाज नहीं किया, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि वादा वो वादे ही क्या जो निभा लिया जाए, यानी नाउज बिल्ला इस तरह का जरा सा एटीट्यूड बन गया है हमारा कि वादा तो तोड़ने के लिए ही होता है। तो ये एटीट्यूड दरअसल बनी इसराइल की रीत है, बनी इसराइल की रिवायत है, वादा करना और फिर तोड़ देना, ठीक है। तो इन्होंने यही किया और मीसाक की यानी मुआहदे की मुखालफत की, तो अल्लाह ताला ने उनको तरह तरह के अजाबों में मुबतला कर दिया, ठीक है। तो अल्लाह ताला को तो निज़ाम यही है, इस दुनिया के अंदर हमें भेजा ही क्यों है, इसीलिए तो भेजा है कि अल्लाह ताला हमें आजमाए, ठीक है, कि हम बंदगी करते हैं जो हमारा मकसद ज़िंदगी है या हम नहीं करते हैं। तो अगर करते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं और उसके ऊपर हमें जजा देते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। किसी न किसी लेवल के, किसी न किसी शक्ल के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, तो उसी को जो है वो अजाब कहा जाता है, छोटा हो, बड़ा हो, जाहिर हो, पोशीदा हो, राइट, घर के अंदर का अजाब हो, घर के बाहर का अजाब हो, लेकिन अजाब होता है। ठीक है, तो इनके साथ भी यही हुआ कि तरह तरह के अजाबों में मुबला कर दिया। बनी इसराइल पर उनकी बदअमली और सरकशी की सजा में दो तरह के अजाब आए, ठीक है, यानी अजाब आया एक तरह का नहीं बल्कि दो तरह के अजाब इनके ऊपर आए, ठीक है। तो कुदरतन जो हमारा सूरह अनाम का सिलसिला चल रहा है, जो कि जुमे के दर्स के अंदर होता है और खवातीन की क्लास के अंदर जो सिलसिला चल रहा होता है सूरह अनाम का, तो उसमें आप लोगों को याद ही होगा कि पिछले दिनों जो आयात पढ़ी गई थी वो इसी टॉपिक पर ही थी, ठीक है, कि अल्लाह ताला के जब हुक्मों की नाफरमानी की जाती है, ठीक है, जिसमें वादा खिलाफी भी जाहिर है, अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी ही है, तो फिर अल्लाह के अजाब जो हैं वो मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं, ऊपर से आता है, नीचे से आता है और अंदर से आता है, ठीक है। तो वही बात यहां पर भी रिपीट हो रही है कि फिर अल्लाह ताला का जो अजाब हुआ ना, तो इनके ऊपर दो शक्लों में आया, एक जाहिरी और महसूस शक्ल, ठीक है। जाहिरी शक्ल यानी जो पैरेंट हो, बड़ी आसानी से आप उसको देख सकते हो, और महसूस का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया जाता है कि जिनको आप अपने फाइव सेंसेस से परसीव कर सकते हो, फील कर सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, आंखों से देख सकते हो, कानों से सुन सकते हो, तो ऐसी चीज को फिर महसूस कहा जाता है, यानी हिस से आप उसको पहचान सकते हैं। तो जाहिरी और महसूस जैसे पथराव या जमीन का तख्ता उलट देना वगैरह, ठीक है, तो ये बहुत ही ऐसे जाहिर किस्म के अजाब आए इनके ऊपर, जिनका जिक्र कुरान करीम की आयात में मुख्तलिफ मुकामात पर आया है, ठीक है। अब यहां पर एक फुट नोट है अजीब, ठीक है, ये आप देखेंगे, ये एक ना एक साइन सा बना हुआ है पथराव के ऊपर, तो वो नीचे फिर एक फुट नोट में इसकी हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुम, अल्लाह ताला उनका साया हमारे सरों पर तादेर आफियत के साथ सलामत रखे और हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कितने मशायख जो हैं वो इतना तेजी के साथ दुनिया से उठ गए, हमारे अपने हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे बड़े बड़े पीर मुख्तारुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और जामे अशरफिया के मोहतमिम थे, वो भी कितने बड़े शेख थे, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी चंद गिने चुने जो खुलफा रह गए थे दुनिया में, वो उनमें से एक थे, ठीक है। तो इतनी तेजी से मशायख उठते चले जा रहे हैं चंद दिनों के वक्फे से, तो अल्लाह ताला दूसरे मशायख की हिफाजत फरमाए। जाना तो सब नहीं है इस दुनिया में, दुनिया से, ठीक है, लेकिन जो दुनिया में हैं तो हमें उनकी कदर करनी चाहिए। तो उन्होंने यहाँ पर ना एक फुट नोट लिखा, क्योंकि तफसीर जो है वो उनके वालिद साहब की लिखी हुई है और वालिद साहब ने उनको इसकी तहकीक का जिम्मा भी दिया था और उसको जो है वो यानी जिस तरह कहते हैं रिवाइज करने का भी टास्क जो है वो अपने बेटे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के जिम्मे लगाया था। तो उन्होंने यहाँ पर एक फुटनोट लिखा कि पहले एडिशनों में यहाँ इबारत यूं थी कि वो ये थी पिछले एडिशन के अंदर कि जैसे उन पर खून और मेंढकों वगैरह की बारिश या पथराव, अलख अलख मतलब आखिर तक, ऐसी इबारत थी ना, खून और मेंढकों वगैरह की बारिश या पथराव। तो बाज अहले इल्म ने तवज्जो दिलाई कि खून और मेंढकों का जो अजाब था ये बनी इसराइल पर नहीं आया था, ये किस पर आया था, ये फिरौन की बनी यानी किबतियों के ऊपर आया था, कॉप्टिक्स के ऊपर, ठीक है, तो ये बनी इसराइल के ऊपर ये वाला अजाब नहीं आया था। अगरचे के वो वाकया भी बनी इसराइल के वाकये के साथ साथ ही था कि मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के पास गए, फिरौन ने बात नहीं मानी, तो फिरौनियों के ऊपर मेंढकों और खून का अजाब आया था। तो मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने ना यहाँ पर भी गलती हो गई, तसामह हो गया और ये बात लिख दी थी, ठीक है। तो अहले इल्म ने जब पढ़ा तो उन्होंने तवज्जो दिलाई कि ये तो नहीं आया था बनी इसराइल के ऊपर, इसलिए यहां से खून और मेंढकों का जिक्र हजफ कर दिया गया है। तो अब जो लेटर एडिशन छपा है ना उसमें से हमने इसको हजफ कर दिया, डिलीट कर दिया और इसको दुरुस्त कर दिया। हजरत मुसन्निफ रहमतुल्लाह की तरफ से यानी हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह की तरफ से अहकर को अपनी बात कर रहे हैं कि मैं तो सबसे ज्यादा हकीर इंसान हूं, ऐसे तसर्रुफात की इजाजत थी। अहकर मोहम्मद तकी उस्मानी गफरल्लाहू, ठीक है, 1409 के अंदर उन्होंने ये फुट नोट देखा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत अहम नुक्ता है कि कितने अजीम वो आलिम थे और शेख थे और अल्लाह वाले थे, इसमें किसी किस्म की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन देखें, गलती उनसे भी हो गई। ठीक है, तो गलती से ना कोई भी मुबर्रा नहीं होता अल्लाह ताला के सिवा। ठीक है, अल्लाह ताला के सिवा कोई भी गलती से पाक नहीं होता। परफेक्शन इज ओनली फॉर अल्लाह सुब्हानहू। ठीक है, लेकिन ये बात भी हमें साथ साथ याद रखनी चाहिए कि इंसान से गलती तो होती है, लेकिन गलती होने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान जो होता है वो काबिले नफरत बन जाता है, या उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, या वो हमारी निगाहों से गिर जाना चाहिए गलती होने की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर उसका ओवरऑल मामला जो है वो अच्छा है, नेक है, दीनदार है, लोगों की खैरख्वाही और लोगों की भलाई का अल्लाह ताला उनको सबब बना रहा है, तो क्या हो गया अगर एक दो गलतियां हो गई या कुछ और भी गलतियां हो गई तो क्या हो गया यार? बड़ी बात तो यह है ना कि गलती को तस्लीम कर लिया। ये तो नहीं किया कि नहीं, मेरे अब्बा इतने बड़े थे और मेरे वालिद थे और मेरे ये थे मेरे वो थे, तो अब जो है ना मैं तो उनकी गलती तस्लीम नहीं करूंगा, इससे तो नाक कट जाएगी। ये नाक कटने का मसला जो है हमारे साथ होता है, छोटों के साथ, जिनकी नाक की कोई हैसियत ही नहीं होती। लेकिन जो बड़े होते हैं ना, उनकी नाक इतनी सस्ती नहीं होती कि वो बड़ी आसानी से के साथ कटनी शुरू हो जाए। वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने नाक की फिक्र वगैरह नहीं करते, उनको तो हक की फिक्र होती है। ठीक है, वो गलती हो गई, तस्लीम कर लिया, उसको चेंज कर दिया। ठीक है, जो गलती तस्लीम नहीं करता, चाहे अपनी हो चाहे अपने किसी रिश्तेदार की हो, तो वो फिर वो गलत काम होता है। और जहां पर ऐसी कोई शख्सियत हो, उसकी गलती अगर हो गई तो उसकी गलती तस्लीम ना करे उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई करीबी, तो इसको फिर गुलू कहते हैं, गुलू। ठीक है, यानी आप बस ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि आपके जो बड़े हैं तो बस वो तो परफेक्ट हैं, उनसे तो कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और आप लगे हुए हैं, हालांकि गलती प्रूव हो चुकी है, फिर भी आप लगे हुए हैं कि नहीं, गलती मैं तो नहीं मानूंगा। इसको गुलू कहते हैं, और गुलू के हमारे दीन के अंदर बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। ठीक है, और आखिरी बात ये भी जो आजिज अक्सर जो है वो साथियों के सामने दोहराता है कि भाई हम अपने मशाइख से इस वजह से मोहब्बत को थोड़ी करते हैं कि वो परफेक्ट हैं, वो एब्सोल्युटली गलती प्रूफ हैं, हम इस वजह से तो उनसे मोहब्बत नहीं करते हैं। राइट, हम उनसे क्यों मोहब्बत करते हैं? क्योंकि उन्होंने अल्लाह की तौफीक से, खुद से नहीं बल्कि अल्लाह की तौफीक से, उन्होंने हमें अल्लाह का इल्म पहुंचाया। मेहनतें करी उन्होंने, जो है वो कुर्बानियां दी उन्होंने, इल्म हासिल किया और उन्होंने आगे पहुंचाने की फिक्र करी, हमारी खैरख्वाही करी। राइट, और उस इल्म को जो उन्होंने अल्लाह की तौफीक से सीखा, उसको हम तक पहुंचाने का हक अदा कर दिया। हम इस वजह से उनसे मोहब्बत करते हैं। राइट, इन्नमल आमालु बिन्नियात, नियत बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हम क्यों मोहब्बत करते हैं भाई अपने बड़ों से? उन्होंने हमें अल्लाह का डर दिखाया, उन्होंने हमें अल्लाह से मांगना सिखाया, उन्होंने हमें अल्लाह के बारे में बताया, अल्लाह की मोहब्बत की कैफियात से रोशनास कराया। दैट इज वाई वी लव देम, नॉट बिकॉज दे आर परफेक्ट। राइट, इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट थे और उनसे कभी गलती नहीं हो सकती थी और वो कोई फौक और फितरत किस्म के इंसान थे जो कि जो चाहते थे वो हो जाता था। हम इस वजह से उनसे मोहब्बत नहीं करते भाई। ठीक है, तो परफेक्शन इज नॉट इवन डिजायर्ड, परफेक्शन इज नॉट इवन डिजायर्ड इन अ ह्यूमन बीइंग, एंड स्पेशली नॉट इन स्कॉलर्स एंड आवर एल्डर्स। इसकी ये तो कोई चीज ही नहीं है परफेक्शन वाली। हम क्यों परफेक्शन की डिमांड करें किसी से भाई? ठीक है, हम तो उनसे दीगर दूसरी वजूहत की वजह से मोहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की कोई गलती हो जाती है उसमें हमारी मोहब्बत में कोई फर्क नहीं आता, बल्कि बढ़ जाती है हमारी मोहब्बत, बढ़ जाती है हमारी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए। ठीक है, तो ये एक जिमनी बात यहाँ पे इस फुटनोट की वजह से आ गई। तो फिर आगे चलते हैं के बनी इसराइल पर ना फिर दो तरह के अजाब आए, एक जाहिरी और महसूस, जैसे पथराव या जमीन का तख्ता उलट देना वगैरह, जिसका जिक्र कुरान करीम की आयात में मुख्तलिफ मकामात पर आया है। दूसरी किस्म का अजाब, ये बड़ा अजीब, दूसरी किस्म का अजाब क्या था? दूसरी किस्म का अजाब की मानवी और रूहानी है। मानवी और रूहानी क्या मतलब? कि ये जाहिरी नहीं है, ये महसूस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही लतीफ किस्म की चीज है जिसको कि आप अपने फाइव सेंसेस से इजीली परसीव नहीं कर सकते। बड़ी मुश्किल से आप फाइव सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए उसको समझ सकते हैं, अदरवाइज इजीली नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जो होती है ना, उसको रूहानी भी कह दिया जाता है, मानवी भी कह दिया जाता है, कि सरकशी की सजा में उनके दिलो दिमाग मस्ख हो गए। दिल और दिमाग मस्ख हो गए, क्या मतलब? कि उनका ब्रेन जो है वो फिजिकली डिसेबल हो गया है, फिजिकली को इसके अंदर फ्रैक्चर हो गया, ब्रेन के अंदर स्कल जो है वो टूट गई उनकी, और उनका दिल जो है वो उसके वॉल्व जो है वो टूट टूट गए, और उसके अंदर जो है वो इस किस्म की कोई फिजिकल इलनेस पैदा हो गई? नहीं, बल्कि दिलो दिमाग मस होने का मतलब क्या है कि उनमें सोचने समझने की सलाहियत ना रहे। ठीक है, अकल से इंसान सोचता है समझता है, और दिल क्या करता है? दिल जो है वो उसके सामने अपने आप को सुपुर्द करता है। जो हक उसकी अकल ने समझ लिया है, सीख लिया है इल्म की रोशनी में, उसको बात पता चल गई कि ये सच है और ये बातिल है, अब अपने आप को उसके सामने सुपुर्द भी कर देना, अपने आप को सबमिट भी कर देना उसके सामने, ये दिल का काम होता है। ठीक है, तो अकल का काम अलग, दिल का काम अलग, अगरचे के दोनों रूह से ही ताल्लुक रखने वाली फैकल्टीज हैं, सलाहियतें हैं, लेकिन उसका काम इल्म से मुतालिक, वो इल्म का बर्तन है, और ये जो है ना वो जज्बात का बर्तन है, कि भाई अपने आप को उसके सामने सबमिट करने का जज्बा है आपके अंदर क्या नहीं है, ये दिल का काम है। ठीक है, तो ना अकल से बात समझ में आ रही, ना दिल जो है वो हक के सामने झुकाने के लिए अपने आप को तैयार हो रहा। ठीक है, ये हो जाता है, ये दूसरा किस्म का अजाब बनी इसराइल के ऊपर आया। तो वो अपने गुनाहों के वबाल में मजीद गुनाहों में मुबतला होते चले गए। ठीक है, जब अकल इंसान की खराब हो जाए और दिल जो है वो बात को मानने का से इनकार कर दे, अगरचे कि उसको पता है कि सच क्या है और बातिल क्या है। ठीक है, तो अब जो है वो आगे उसके लिए बस एक डाउनवर्ड स्लोप है, वो अब वो नीचे गिरता चला जाएगा, फिसलता चला जाएगा, यानी मजीद गुनाहों के बवाल में मुबतला होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसका तो हल ये था ना कि आप जो है वो अपनी गलती को तस्लीम कर लें, मान लें, तौबा कर, तब फिर आपका जो है वो रिवर्स जो जर्नी है वो शुरू होगी। जब तक तौबा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप फिसलते ही चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अकल का मस्फ होना ये बड़ी अहम चीज है। ठीक है, कि भाई जिस चीज को आप सही समझते भी हैं, मानते भी हैं, अब आपके एक्शंस उसके खिलाफ क्यों हो रहे हैं? ठीक है, आप उसके यानी आपको पता है भाई, आजकल सबसे बड़ा डिलेमा हमारे लिए क्या है, दीनदार मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा डिलेमा हमारे लिए क्या है, सबसे बड़ा जो है वो एक यानी एक अजीब फिनोमिना, कि हमको अच्छी तरीके से पता है कि सच्चा इंसान जो होता है ना, उसी से सच की तवक्को रखनी है, और झूठे इंसान से यानी जो आदतन झूठ बोलने वाला है उससे सच की तवक्को नहीं रखनी है, ये हमें अच्छी तरीके से पता है। हम अपने रोजमर्रा के मामलात के अंदर इसके ऊपर अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, कि जिसको सच्चा मानते हैं फिर उसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और जिसको सच्चा नहीं मानते उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये जानने के बावजूद, इस उसूल से वाकिफ होने के बावजूद, आप किसी झूठे इंसान की बात के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू कर दें, या झूठे सोर्स जिसके आपको पता है कि ये यानी बहुत ही बुरे किस्म के लोग हैं, इनका एक्सप्लॉइटर्स हैं ये, और मुनाफिक किस्म के लोग भी हैं, और यानी इनकी हरकतें और इनकी जो है वो क्वालिटीज, इनकी सिफात जो है वो बहुत ही खराब किस्म की वो सिफात है, जैसे मीडिया वाले, मैं मीडिया वालों की बात यहां पे कर रहा हूं। तो अब वो जो आपको कोई खबर दे रहे हैं, तो आप कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठना? ठीक है, और फिर माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान वाले और इंडिया वाले भी सारे बैठे हुए यहाँ पे क्लास के अंदर ना, तो सब जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट को बुरा भला, गवर्नमेंट ये है, गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, गवर्नमेंट वो नहीं किया, गवर्नमेंट तो ऐसी है, गवर्नमेंट तो वैसी है, एक से एक जो है ना बुरा भला कहना। तो हमसे कहलवा लो, PhD किया हुआ हमने गवर्नमेंट को बुरा भला कहने में, भाई ठीक है, हम कब कह रहे हैं कि वो नेक है, हम कब कह रहे हैं कि वो साले हैं? लेकिन गवर्नमेंट साहिबा जो है वो आपको कोई चीज बोल देती हैं, आप आमन ना वसत अपना करके बैठ जाते हैं, क्योंकि अखबार में वहां से स्टेटमेंट आ गई और वो स्टेटमेंट जो है थी वो आपके पॉलिटिकल नजरियात के खिलाफ नहीं थी, कोई कोई और खबर थी, ठीक है ना, कोई और खबर थी, कोई और आपने आपको उन्होंने जो है वो यानी अजीब व गरीब किस्म की जो है वो किसी चीज में लगा दिया और आप उसके ऊपर ट्रस्ट करके बैठ गए। वहां सारी बुराई किधर चली गई, आपकी अकल कहां चली गई कि आप जो है वो ऐसे शख्स और ऐसे सोर्स के ऊपर ट्रस्ट करके बैठ गए किसी ऐसी चीज के बारे में जो कि कोई उसकी दलील नहीं मिल रही है, कोई उसके जो है वो सेंस नहीं बन रहा है, लेकिन बस ऊपर से आ रही है खबर, आप जो है वो अमन्ना व सदकना कह के बैठ गए। तो हमारा ये रवैया जो है ये मीडिया के बारे में और गवर्नमेंट्स के बारे में ये क्यों बन गया है, इसी वजह से बन गया कि हमने भी वही किया है जो कि बनी इसराइल ने किया था, अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को तोड़ा है। तो चूंकि हमने वही किया जो बनी इसराइल ने किया, तो अल्लाह ताला ने हमारे साथ वही किया जो कि बनी इसराइल के साथ किया भाई, कि हमें भी अजाबों के अंदर मुसल्लत किया। कुछ अजाब जो है वो महसूस हैं, नजर आने वाले जाहिरी अजाब हैं, और कुछ मानवी और रूहानी अजाब हैं, यानी अकल मस्ख हो जाना भाई, अकल का मस्ख हो जाना ये रूहानी और मानवी अजाब है जिसमें हम भी मुब्तला हैं भाई। नथिंग एड्स अप, लेकिन स्टिल वी ट्रस्टेड, स्टिल वी बिलीव इट, और जिसको कि हमें बिलीव करना चाहिए उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। नाम लेते हैं जी दीनदार हो गए, मुसलमान हो गए, आप कुरान को, भाई जो एथियस किस्म के हमारे दरमियान भी बहुत सारे लोग हैं जो कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, अल्लाह रहम करे हमारे ऊपर, ऐसे कितने सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, नाम के मुसलमान है लेकिन कुरान को अल्लाह की किताब नहीं मानते, नाम के हैं मुसलमान, ठीक है, लेकिन हम तो मानते हैं ना, इधर बैठे भी क्यों हैं तफसीर की क्लास के अंदर, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की किताब को पढ़ना चाहिए क्योंकि यही सच है, यही हक है। तो भाई जिसको हक मानते हो तुम अपनी नॉलेज अपनी अंडरस्टैंडिंग तुम वहां से क्यों नहीं लेते हो, तुम दुनिया के अंदर जो अहवाल को तुम समझने की कोशिश कर रहे हो कि दुनिया में ये अच्छा है कि ये बुरा है कि ये फायदेमंद है कि ये नुकसानदेह है, व्हाई आर यू गेटिंग योर अंडरस्टैंडिंग इन द लाइट ऑफ मीडिया। ठीक, मीडिया की खबरों की बुनियाद पर तुम हक और सच का और सही और गलत का फैसला क्यों कर रहे हो, क्योंकि अकल मस्ख हो गई है भाई। और मीडिया जाहिर है वो जो हुकूमतें होती हैं उन्हीं के कंट्रोल में होता है, तो इन लोगों की बताई हुई खबरों की बुनियाद पर तुम फैसले कर रहे हो कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन फायदामंद है कौन नुकसानदेह। तुम कुरान की रोशनी में क्यों नहीं है ये समझने की कोशिश करते कि दुनिया में क्या हो रहा है, उसकी हकीकत क्या है। तुम हदीसे मुबारका जिसकी वैलिडिटी कंफर्म है, नबी अलैहिस्सलाम की बातें, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात बिल्कुल पक्की ठक्की हैं राइट, सही अहादीस, मुतवातर अहादीस, मशहूर अहादीस, और जईफ भी जो होती हैं उनमें भी अक्सर ऐसी होती हैं कि उनमें इतने कसीर तुरुक होता है किसी जईफ हदीस का भी कि उसको भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो आपके पास हक का ये जरिया मौजूद है बट आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते, मीडिया को सुने चले जा रहे हैं, एंकर्स को सुने चल जा रहे हैं, ये बार बार ये बात सामने आ रही है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यही देखने को मिल रहा है कि इतने दीनदार हैं, इतने दाढ़ी वाले और इतने टोपी वाले और इतने मस्जिद वाले और इतने जो है वो आलिम भी बन रहे हैं और आलिमा भी बन रही हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग्स किधर से ले रहे हैं, रोएबुज़ा से ले रहे हैं, एंकर से ले रहे हैं, और टॉक शो से ले रहे हैं, और अखबार से ले रहे हैं, और जनरल से यानी मैगजीन से ले रहे हैं, और फलाने सोर्स से ले रहे हैं, और फलाने सोर्स से ले रहे हैं। क्या हो गया है, पता है क्या हो गया है, ये नहीं कि क्या हो गया कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं, ये तो एक अलास जिस तरह कहते हैं ना अंग्रेजी के अंदर, अफसोस हो क्या गया है ये हमें अच्छी तरीके से पता है क्योंकि अल्लाह ताला अपने कुरान के अंदर इसको खोल चुके हैं कि जब अल्लाह की वादे की साथ तुम ये करते हो तो अल्लाह ताला तुम्हारी अकल को मस्त कर देते हैं। अब इससे निकलने का रास्ता अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है क्योंकि तौबा का दरवाजा खुला हुआ है, जब तक मौत नहीं आ जाती उस वक्त तक तौबा का दरवाजा खुला है, हम तौबा कर लें इससे पहले कि हमें मौत आ जाए, बजाय इसके कि उल्टी सीधी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर दें। अपने अमल की, अपने बेवकूफी की हुज्जत बनाते रहे। हमें तौबा करने की जरूरत है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो फरमाते हैं कि अच्छा, मजे की बात यह है कि कुछ माशाल्लाह, मतलब खैर छोड़ना इस बात को, सनद 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 है, कोई चीज सनद के बगैर नहीं होनी चाहिए। अब अनब्रोकन चेन ऑफ ट्रांसमिशन, उसके जरिए से जो है वो हमें इल्म मिलता है। तो अल्लाह के बंदे, ये मीडिया की कौन सी अनब्रोकन चेन ऑफ ट्रांसमिशन है? कौन सी सनद तुम्हें मिलती है मीडिया की इंफॉर्मेशन के ऊपर? राइट, यहां तुम्हारी ये स्टैंडर्ड्स किधर चले जाते हैं? कि अच्छे अच्छे जो है वो सनद याफ्ता और सनद की बातें करने वाले, वो दुनिया के अहवाल को जो है वो गैर सनद, गैर मुस्तनद जराए से जो है वो ले रहे हैं, जिसकी कोई सनद ही नहीं। अकल के मस्क होने की ये बदतरीन मिसाल है। इरशाद इरशाद फरमाते हैं कि फबिमा नक़्ज़िहिम मीसाक़हुम लअन्ना, अल्लाह ताला ने फरमाया, वजअलना क़ुलूबहुम क़ासिया, कि यानी हमने उनकी बदअहदी और मीसाक की खिलाफ वर्जी की सजा में उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। ठीक है, महरूम कर दिया अपनी रहमत से। रहमत से दूर करने का मतलब ही महरूम करना है, वरना रहमत अल्लाह ताला की, इन्ना रहमती वसअत कुल्ला शय, तो हर चीज के ऊपर वसी है। लेकिन वही पीछे पिछली क्लास में बात हुई थी ना कि आप एक वैक्यूम में जब बंद हो जाए तो बाहर की ऑक्सीजन जो है वो आपके वैक्यूम के अंदर नहीं पहुंच रही होती, अगरचे कि हर जगह मौजूद है वो ऑक्सीजन। तो आप फिजिकली तो दूर नहीं है लेकिन महरूम तो है ना ऑक्सीजन से। यही मामला अल्लाह की रहमत का होता है। आप फिजिकली दूर नहीं होते लेकिन महरूम हो जाते हैं, करीब होने के बावजूद आप तक अल्लाह की रहमत नहीं पहुंचती है, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया उसके बारे में। तो इससे क्या होता है कि उनके दिलों को सख्त कर दिया। अब रहमत नहीं पहुंचेगी, रहमत की बारिश नहीं होगी, तो फिर दिल सख्त हो जाएंगे, दिल की जमीन, कि अब उनमें किसी चीज की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। यानी अच्छी चीज के जो सीड्स होते हैं वो अंदर एंटर हो करके फिर उसके अंदर जो है वो पौधा आना, इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी अब, क्योंकि अब जो है ना ये जमीन बंजर हो चुकी है। इसी रहमत से दूरी और दिलों की सख्ती को कुरान करीम ने सूरह मुत्तफ़िफ़ीन में 30वें पारे में, छोटी सूरह जो है, राना के लफ्ज से ताबीर फरमाया। यानी अल्लाह ताला एक ही कॉन्सेप्ट को फिरा फिरा के, कई फनुसर्रिफुल आयाती, कैसे फिरा फिरा करके हम अपनी आयात को बयान करते हैं, कहीं पे जो है वो कुलूबहुम कासिया के लफ्ज से बात को समझा रहे हैं और कहीं पे जो है वो राना के लफ्ज से, कि कल्ला बल राना अला कुलूबहिम मा कानू यकसिबून। तो अल्लाह ताला ने तो बात पहुंचाने की और बात समझाने की तमाम हुज्जतें हमारे ऊपर तमाम कर दी। वी डोंट हैव एनी एक्सक्यूज कि जी हमें तो किसी ने बताया नहीं था, कोई और ना भी आए बताने के लिए, हमारे अपने खालिक और मालिक ने सब कुछ हमें बताया, लेकिन हम तवज्जो नहीं करते, तो किसका कसूर है? तो यानी पुरानी आयात बय्यिनात और खुली हुई निशानियों से इनकार की वजह यही है कि उनके दिलों पर उनके गुनाहों की वजह से जंग बैठ गया है। ठीक है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया है कि इंसान जब अव्वल कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, पहला गुनाह किया है इसने तो अभी दिल जो है वो साफ था, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका दिल स्याह नहीं होता, और जब तक वो बालिग नहीं होता तो उस वक्त तक उसके दिल के ऊपर गुनाहों के दाग नहीं लग रहे होते, तो वो रूहानी तौर पर रोशन दिल होता है। ठीक है, जब तक बालिग नहीं है तो अगरचे कि आपने उसको कितनी गंदी एनवायरनमेंट में डाल दिया हो, तो स्याही जो है ना वो अभी आ रही है लेकिन छाई नहीं है दिल के ऊपर। ठीक है, तो गंदे माहौल में जो पेरेंट्स डालते हैं ना अपने बच्चों को, तो ऐसा नहीं है कि अब उनका दिल जो है वो मुनव्वर ही रह जाता है, हालांकि इतने गंदे माहौल में है, लेकिन चूंकि बालिग नहीं थे इस वजह से दिल जो है वो मुनव्वर है, क्योंकि बालिग नहीं हुए। नहीं, बल्कि जिस तरीके से घटा आ रही होती है ना, ठीक है, तो वो घटा चारों तरफ, दिल के चारों तरफ पहुंच गई है, बस अभी तक उसके ऊपर चिपकी नहीं है। अब जो बुरे माहौल के अंदर बच्चे पलते बढ़ते हैं, गुनाहों के माहौल में, मूवीज, म्यूजिक और गंदी बातें, राइट, और वीडियो गेम्स और इस किस्म की जो खराब करने वाली चीजें हैं रूहानी तौर पर इंसान को, तो वो घटा जो होती है वो इनके दिल के करीब जमा हो जाती है। जैसे ही बालिग होते हैं, तो बालिग होते हुए वो तौबा तो नहीं करते ना कि अब हमने तौबा कर लिया, अब हम नहीं जाएंगे वापस उस गंदे माहौल के अंदर। जैसे ही बालोग होते हैं वैसे ही वो चीजें कंटिन्यू हो रहती हैं, अमाल तो कंटिन्यू हो रहे होते हैं ना। जो आपने बेनमाजी था तो जिस दिन वो बालिग होगा तो एकदम सती नहीं वो नमाज पढ़ना शुरू कर देगा वो बच्चा, क्योंकि उसको तो नमाज की आदत डाली ही नहीं किसी उसके पेरेंट ने। म्यूजिक सुनने वाला बच्चा जिस दिन बालिग होगा तो क्या उस दिन वो म्यूजिक से तौबा कर लेगा? नहीं, उसकी तो म्यूजिक चलती रहेगी ना, बालिग होने के बाद भी चलती रहेगी। तो वो तो अब चल रही है, तो अब से क्या होगा कि एकदम से वो काली घटा जो है वो उसके दिल के ऊपर आके चिपक भी जाएगी। तो बुरे माहौल से बचाना इतना जरूरी है, इसलिए जरूरी है। ये नहीं कि अभी तो बच्चा है अभी क्या मसला है, जब बालिग हुआ को तो बचा लेंगे उसको बुरे माहौल से। वो कैसे बचाओगे भाई बालिग होने के बाद बुरे माहौल से? ठीक है, सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि बचा सके। इसी वजह से ये सब जो बातें हैं इसके अंदर हजरत मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने भी ये पॉइंट लिखा है। अगर आपके पास तफसीर की किताब सामने मौजूद है तो आप जो है ना वो पेज 375 वॉल्यूम 3 के 375 पेज के ऊपर पढ़ लें कि हजरत ने लिखा कि जहां तक गौर किया जाए इंसान को इस हालत पर पहुंचाने वाली चीज अक्सर उसका गलत माहौल और बुरी सुहबत होती है। नाउज बिल्ला मिनहुमा। इसीलिए बच्चों के मुरब्बियों का फर्ज है कि बच्चों को ऐसे माहौल और सोसाइटी से बचाने में पूरी कोशिश करें। ठीक है, बच्चों को बचाना मुरब्बियों का फर्ज है। ये अजम्पशन नहीं चलेगी कि कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता, ये तो अच्छे होके निकल गए वो तो अच्छे होके निकल गए इसी माहौल से, तो इस वजह से मेरा बच्चा भी अच्छा ही होके निकलेगा। ये अजम्पशंस होती हैं, ऐसी कोई दलील नहीं होती, कोई प्रूफ नहीं होता है। ठीक है, तो इंसान का मामला ऐसे ही होता है कि जब वो गुनाहों से दूर होता है तो उसका दिल सफेद होता है, यानी रूहानी तौर पर सफेद होता है। फिर गुनाह करता है तो एक स्याह नुक्ता लग जाता है जिसकी बुराई को वो हर वक्त ऐसा महसूस करता है जैसे किसी साफ सफेद कपड़े पर एक स्याह दाग लग जाए, तो वो हर वक्त नजर को तकलीफ देता है। माशाल्लाह जो सफेद कुर्ता शलवार पहनते हैं जुब्बा पहनते हैं राइट, तो उसके ऊपर कोई धब्बा लग जाए ना, चाहे वो सालन गिर जाए राइट, या कोई जो है वो शरबत गिर जाए तो वो धब्बा लग गया, अब वो बॉदर करता रहता है आपको। कोई अगला बंदा भी देखेगा आपके आपके इतना अच्छा माशाल्लाह जुब्बा पहने में सफेद, आपके जुब्बे के ऊपर जो है वो सालन का दाग लगा हुआ है। ठीक है, तो वो बॉदर करता है यानी नजर को तकलीफ देता है। फिर अगर उसने मुतनब्बे होकर तौबा कर ली और आइंदा गुनाह से बाज आ गया तो वो नुकता मिटा दिया जाता है, अल्लाह ताला मिटा देते हैं भाई। ठीक है, इस रूहानी नुक्ते को मिटा देते हैं। और अगर उसने परवाह ना की बल्कि दूसरे गुनाहों में मुबतला होता चला गया तो हर गुनाह पर एक नुक्ता सियाह का इजाफा होता रहेगा, यहां तक कि उसका सफाए कल्ब यानी कल्ब का सफा जो है इन नुक्तों से बिल्कुल स्याह हो जाएगा। उस वक्त उसके कल्ब की यह हालत हो जाएगी जैसे कोई बर्तन औंधा रखा हुआ हो कि उसमें कोई भी चीज डाली जाए तो वो फौरन बाहर आ जाती है, यानी उसके अंदर एंटर ही नहीं हो पाती है, वो औंधा रखा उल्टा रखा हुआ है ना उस बर्तन को प्याले को। इसीलिए कोई खैर और नेकी की बात उसके दिल में नहीं जमती, उस वक्त उसके दिल की एक कैफियत हो जाती है कि ला यारिफू मारूफन वला यनकिरू मुनकरन मुनकरन। ठीक है, कि अब ना वो किसी नेकी को नेकी समझता है और ना बुराई को बुराई, यानी उसकी मारिफत जो होती है ना नेकी की पहचान और बुराई की पहचान ये बिल्कुल मिस्टअप हो जाती है, हत्ता कि मामला बरअक्स होने लगता है कि ऐब को हुनर समझने लगता है, बदी को नेकी समझने लगता है और गुनाह को सवाब समझने लगता है। ठीक है, अब अक्सर कहते हैं ना कि आई फील दिस इज द राइट थिंग टू डू, हाउ डू यू फील कि दिस इज द राइट थिंग टू डू? डू यू नो दिस इज द राइट थिंग टू डू और डू यू आर जस्ट अज्यूमिंग दिस दैट दिस इज द राइट थिंग टू डू? एंड आई फील दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू, डू यू हैव एनी प्रूफ? डू यू हैव एनी नॉलेज? कोई दलील है आपके पास कि ये गलत चीज है? नहीं, आई फील इट। तो भाई आपकी फीलिंग, आपकी जो जिंदगी के अहवाल चल रहे हैं तो आपकी फीलिंग तो अब उल्टी हो चुकी है गुनाहों की वजह से, तो अब तो आपको बुरी चीज अच्छी लगेगी, जैसे कि मौसीकी रूह की गजा है। ने? अब वो मौसीकी जो है जिसको नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह जिसने हमें बनाया और हमारे पूरे स्ट्रक्चर को बनाया उनके जो मैसेंजर हैं वो कहते हैं कि मौसीकी से जो है वो निफाक पैदा होता है, इंसान की जो रूहानी कैफियात होती हैं वो गुनाह के लिए वो जो तैयार हो जाती है मौसीकी से। और इसको जो है ना वो अच्छा फील हो रहा है, वाह 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 क्या मतलब, इतनी अच्छी जो है वो धुन है, इससे जो है आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड। भाई व्हाई आर यू फीलिंग रिलैक्स्ड? बिकॉज आपका मामला बरक्स हो चुका है, ठीक है? तो इसी को मस्त होना कहते हैं। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है ना कि बिकॉज आई एम फीलिंग रिलैक्स दैट इज वाई दिस इज द राइट थिंग टू डू। भाई आपकी फीलिंग की आपकी डेफिनेशन जो है उल्टी हो गई है, तो अब तो आपको उल्टी चीज से ही जो है वो रिलैक्सेशन फील हो रही है, ठीक है? तो इसी वजह से ना ये हम अपनी फीलिंग्स के ऊपर अगर जाने लगे तो फिर दीन की जरूरत ही खत्म हो जाती है भाई। कोई मकसद ही नहीं था कुरान का, अगर फीलिंग्स की बुनियाद पे सही और गलत का फैसला करना है। अच्छा, और अपनी तुगयानी और सरकशी में वो बढ़ता ही चला जाता है, ठीक है? तो ये इसके गुनाह की नकद सजा है जो उसको दुनिया ही में मिल जाती है। तो हम जहाज में सफर कर रहे थे इस्लामाबाद से कराची का, तो आपको पता है दीन दुनिया साथ साथ, दीन की हवाएं भी चल गई हैं और दुनिया की तो पहले से ही जो है वो गालिब थी। तो हम तो यही सोच रहे थे कि इस माहौल के अंदर पता नहीं ये सफर की दुआ पढ़वाएंगे कि नहीं पढ़वाएंगे। हम तो पढ़ ली थी, लेकिन तो वो सफर की दुआ फिर आ गई एकदम से जहाज के जो सिस्टम पे। लेकिन सफर की दुआ खत्म किए हुए शायद सेकंड भी नहीं गुजरा होगा कि मौसीकी शुरू। सफर की दुआ हदीसे मुबारका से, माशाल्लाह अरबी के अंदर, प्योर अरबी के अंदर है, नबी अलैहिस्सलाम के अल्फाज सुना रहे हैं सबको, और उसके फौरन बाद जो है वो नबी अलैहिस्सलाम की बात की कर रद्द भी कर रहे हैं साथ साथ मौसीकी के साथ, ठीक है? तो अब उसको नेकी समझ रहे हैं कि जी हमने तो दुआ भी पढ़वाई है और अब जो है ना हम मौस अब जो है रूह की गजा भी अब यानी बाकी जो है वो आजकल खाना वाना तो बड़ा महंगा हो गया, तो उसी फ्लाइट के अंदर जो है वो आपको परचेज करना पड़ रहा था अपना खाना, अगर कोई और चीज आपको चाहिए उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे, रूह की गजा के लिए आपको फ्री मिलेगी, ठीक है? हाँ, पेट की गजा के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, रूह की गजा आपको फ्री मिलेगी। क्यों है ऐसा? अकल मस्त हो गई, ठीक है? तो बाज अकाबिर ने फरमाया है कि इन्ना मिन जजाइल हसनतिल हसनतु बादहा व इन्ना मिन जजाइस सय्यतु जजाइस सय्यति असय्यतु बादहा, यानी नेकी की एक नकद जजा ये होती है कि उसके बाद उसको दूसरी नेकी की तौफीक मिलती है। उसी तरह गुनाह की नकद सजा ये होती है कि एक गुनाह के बाद उसका दिल दूसरे गुनाहों की तरफ मायल होने लगता है। मालूम हुआ कि ताआत और मासी में तजाजुब है, तजाजुब जज्ब से निकला, यानी वो एब्जॉर्ब करती हैं, गुनाह जो है वो दूसरे गुनाह को अपनी तरफ खींचता है, जज्ब करता है अपनी तरफ। उसी तरह नेकी जो है वो दूसरी नेकी को अपनी तरफ जज्ब करती है, ठीक है? लेकिन नेकी दूसरी नेकी को जज्ब कब करती है? चलिए आपसे पूछ लेते हैं, क्या अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस नेकी कर ली तो वो दूसरी नेकी को जज्ब कर रही है? तो फिर तो माशाल्लाह जहाज के अंदर उन्होंने दुआ पढ़वाई थी, है? जहाज के अंदर दुआ पढ़वाई थी ना, सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, अल्लाह के कलाम के अल्फाज थे, कुरान के अल्फाज थे। तो अब कुरान के अल्फाज के बाद जो है वो तो फिर उसके बाद कोई उनको आगे जो है वो फिर तिलावत विलावत लगा देनी चाहिए थी, राइट? या उनको जो है वो कोई हदीस मुबारक सुनानी चाहिए थी, या जो है वो पीर जुल्फिकार अहमद नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह के जो है वो बयान लगा देना चाहिए था। तो ये तो बात समझ में नहीं है कि नेकी नेकी को जज्ब करती है, उधर जो है वो कुरान के अल्फाज के बाद जो है मौसीकी शुरू कर दी। तो ये तो फिर बात समझ में नहीं आई। तो उसका जवाब क्या लिखा आपने कि जब नेकी सही नीयत से की गई हो। चले माशाल्लाह, ये एक अच्छा जवाब है, लेकिन आई वॉज होपिंग टू हेयर समथिंग मोर देन दैट, ठीक है? ये भी सही है कि जब नेकी सही नीयत से की गई हो, लेकिन इससे जो है ना बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आप उनकी नीयत को जो है ना वो नहीं शक कर सकते। वो बड़ी अच्छी, आप क्या समझते हैं सारे बदनीयत लोग हैं? क्या मतलब है आपका? आप लोगों की नियतों में शक कर रहे हैं, उन्होंने नेक भाई आपके जहाज वाले फ्लाई जिना वाले थे वो हमारे हैं, जिना साहब को फ्लाई करवाना शुरू कर दिया, तो ठीक है, तो वो आपका ख्याल हो बदनीयत नहीं भाई, बड़े नेक नियत लोग होते हैं, आपको नहीं पता हम कितने ज्यादा बड़े नेक नियत हैं। तो सही जवाब दें ना, ये नेक नियत ही वगैरह के चक्कर नहीं चलेंगे। रस्मी दीन सच बात नहीं बनेगी, रस्मी दीन से बात नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, यही तो पूछ रहे हैं आपसे। अगर अल्लाह ताला ने दिल सख्त ना किया हो, जब दिल नरम होगा जब ही वो कुछ जज्ब करेगा, तो नरम कैसे होगा? इसका जवाब चले दे दें। जब दिल नरम होगा तब नेकी जो है वो अगले नेकी को जज्ब करेगी। माशाल्लाह, इन्होंने वन वर्ड जवाब चाहिए था बस। तौबा से ना, गुनाह के ऊपर नदामत हो, गुनाह को जस्टिफाई ना कर रहा हो, इसको तौबा कहते हैं। जब इंसान तौबा की स्टेट में होता है ना, स्टेट ऑफ तौबा, दिस इज अ स्टेट। तौबा एक एक अमल भी है, जिसमें आप अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व तूबु इलैह, ये एक अमल कर रहे हैं कि आप जो है वो जुबान से तौबा कर रहे हैं, और आप जो है वो कॉन्स्टेंटली दिल के अंदर यानी नादिम हो रहे हैं अपनी गलती के ऊपर, ठीक है, यानी एक एक्टिवली आप एक तौबा का अमल कर रहे हैं। लेकिन तौबा एक एक स्टेट भी है, जैसे कि बैकग्राउंड के अंदर एक सिस्टम चल रहा होता है ना, आपकी जो आपका फोन है उसके ऊपर एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, राइट, और आपके लैपटॉप के ऊपर जो है विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, वो बैकग्राउंड में चल रहा है ना, उसी तरीके से तौबा भी एक कैफियत का नाम है। क्या मतलब? कि जो अल्लाह की नाफरमानी है उसको बुरा समझना, उसको गलत समझना, ठीक है, उसको सही ना समझना, उसको अच्छा ना समझना। अब ये जो कुरान की आयत और नबी अलैहिस्सलाम की जो सफर की दुआ पढ़ाई, तो ये किन लोगों ने पढ़ाई? जो के नबी अलैहिस्सलाम की नाफरमानी, कुरान की नाफरमानी को बुरा नहीं समझ रहे हैं, राइट। तो स्टेट ऑफ तौबा नहीं है यहां पर। जब ये स्टेट ऑफ तौबा नहीं है, तो अब जो नेकी की जा रही है ना, इस एब्सेंस ऑफ तौबा की स्टेट के अंदर जो नेकियां की जा रही हैं, ये दूसरी नेकी को जज्ब नहीं करेंगी। हाँ, रैंडमली फिर थोड़ी देर के बाद थोड़ी और कोई और नेकी कर लेंगे, ठीक है ना। वो रैंडम नेकियां, यानी जिन नेकी का पिछली नेकी से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, जज्बियत वगैरह, जाज़बियत वगैरह कुछ नहीं हो रही है, बस हो रही है आपके किसी कुछ ही ना किसी, वो इधर से कुछ सुन लिया, इधर से कुछ सुन लिया, अपनी तरफ से कुछ अज्यूम कर लिया कि ये भी नेकी होती है, चलो मैं ये भी कर लेता हूं, ठीक है। क्योंकि तौबा की स्टेट नहीं है, बल्कि गुनाह को जस्टिफाई करना या गुनाह को नेकी समझने की स्टेट में आप चल रहे हैं ना, ठीक है। गुनाह को आप गुनाह समझ ही नहीं रहे, सही है। तो हम तो ऐसी नेकियों पे गुजारा कर रहे हैं ना अपना, हम गुनाह को गुनाह ही नहीं समझते, बस नेकी करे जाओ, नेकी करे जाओ, उसमें हम बहुत जीते हैं माशाल्लाह, एक से एक बड़ी 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 नेकियां करते हैं माशाल्लाह। इतनी बड़ी नेकियां तो शायद दुनिया में कोई नहीं करता होगा जितना एक पाकिस्तानी करता है ना, वो जितनी चैरिटी, ईदी ट्रस्ट, और जितनी दुनिया में कहीं कोई ईदी ट्रस्ट ऐसी आप कोई चीज ला के दिखा दें जितना पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। लेकिन साथ साथ गुनाह को भी जो है वो नेकी समझ के करे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो फरमाया कि एक नेकी दूसरी नेकी को दावत देती है, बाकी तफसील आपको समझाने की कोशिश करिए साजिश ने, और एक बदी दूसरी बदी और गुनाह को ये साथ लेकर क्या, ठीक है। क्योंकि अब आप तौबा की स्टेट में नहीं है, तो अब जो आप गुनाह कर रहे हैं ना, ये गुनाह जो है वो दूसरे गुनाह को खींचेगा, ये गुनाह दूसरे गुनाह को खींचेगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि आप तौबा के स्टेट में नहीं है। लेकिन फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन, दूसरी साइड पे, अगर आप तौबा की स्टेट पर हैं, वो आप बता दें, अगर आप तौबा की स्टेट में हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर क्या होता है? क्लास का टाइम खत्म हो गया, इसके ऊपर हम खत्म कर देंगे अगर आप सही जवाब दे देंगे तो। देखें, आपने नेकी करी लेकिन आप तौबा के स्टेट में नहीं है, तो अब ये नेकी दूसरी नेकी को जज्ब नहीं करेगी, अट्रैक्ट नहीं करेगी, रैंडमली आपसे फिर कोई नेकी हो जाएगी, लेकिन जज्बियत वाला मामला नहीं होगा। उसी तरीके से दूसरी तरफ, जब आप तौबा की स्टेट में नहीं है, तो गुनाह जो है वो गुनाह को जज्ब कर रहा है। तो अब इससे कंक्लूड करें, दूसरी साइड पे वापस आए, नेकी वाली साइड पे, कि अगर आप तौबा की स्टेट में हैं, गुनाह को गुनाह समझ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? दिल में कराहत होगी, कराहियत होगी गुनाह की वजह से, तो फिर, क्योंकि आप तो गुनाह को गुनाह समझते हैं, गुनाह को बुरा समझते हैं, लेकिन आपसे गुनाह हो गया, गुनाह आपसे हो गया लेकिन आप तौबा की स्टेट में हैं, तो क्या होगा? नेकी के बाद नेकी की तौफीक मिलेगी। तो भाई हम तो गुनाह की बात कर रहे हैं अभी, नेकी के बाद नेकी नहीं, तौबा के बाद तौबा की तौफीक नहीं मिलेगी। वो भी तो एक अल्लाह की तरफ से ही होता है ना, बंदा अल्लाह ताला बंदे को गुनाह की तरफ भी तो धकेलते हैं ना। तौफीक का लफ्ज अगरचे के पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ आता है, लेकिन हम यहाँ पे आसानी की खातिर उसको नेगेटिव कॉनोटेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बात समझाने के लिए। ठीक है, कि जो तौबा की स्टेट में होते हैं ना, उनसे अगर कोई गुनाह हो जाता है तो अब ये गुनाह जो है वो दूसरे गुनाह को जज्ब नहीं करता, ये दूसरे गुनाह को जो है वो खींचता नहीं है, क्योंकि ये गुनाह जो उससे हुआ है ये रैंडमली हो गया है, किसी मुश्किल में फंस करके हो गया है, बतकाजाए बशरियत जिसको कहते हैं हमारे बशर, है ना भाई? भाई बशर है ना, इंसान से गलती हो जाती है ना, इससे गलती हो गई, लेकिन चूंकि स्टेट ऑफ तौबा के अंदर है तो अब ये चैन से नहीं बैठ सकेगा जब तक ये जो है वो उसके ऊपर अल्लाह ताला से नादम और शर्मिंदा होकर के माफ नहीं करवा देगा उसको। अब ऐसा नहीं होगा कि एक गुना कर लिया अब दूसरा भी करेगा, दूसरा कर लिया अब तीसरा भी करेगा, तीसरा कर लिया अब चौथा भी करेगा, नहीं, क्योंकि अब ये स्टेट ऑफ तौबा में था। बात समझ में आ रही? बहुत आसान बात है, अगर अभी मैं अल्फाज में ना समझा सकूं मेरी गलती है, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग सुनकर कोशिश करेंगे समझने की तो बहुत आसानी से समझ। इसकी मिसाल सहाबाए कराम, सहाबाए कराम तो हमारी हमारा तो स्टैंडर्ड सहाबाए कराम है ना, क्योंकि वो भी उम्मती थे हम भी उम्मती थे। नबी अलैहिस्सलाम तो नबी थे ना, हम तो नबी, हमें से कोई भी नबी नहीं है और ना नबी बन सकता है कोई भी, लेकिन उम्मती तो हम हैं, तो हमारा असल जो स्टैंडर्ड है वो तो सहाबा है। ठीक है, सहाबा वर इन अ स्टेट ऑफ तौबा, सहाबा से गलती हो जाती थी लेकिन ऐसा नहीं होता था कि एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, बल्कि खत्म, गलती हो गई यार, इंसान था, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह मुझसे क्या हो गया, अल्लाह माफ कर दे। हजरत अबू लुबाबा रजी अल्लाह तआला इस्तवान है, अबू लुबाबा मस्जिद नबी के अंदर जो मौजूद है, कितनी बड़ी गलती उनसे हो गई थी कि नबी अलैहिस्सलाम का राज फाश कर दिया, लेकिन कैसी तौबा करी उसके फौरन बाद के जरबुल मिसल बन गए वो तौबा के लिए। ठीक है, तो गुनाह के बाद तौबा की तौफीक मिलेगी, यानी तौबा की तो स्टेट में वो है, लेकिन जो एक एक रैंडमली एक गुनाह हो भी गया ना उसके ऊपर भी जो है ना फिर, तो इनकी मिसाल वैसी होती है जैसे पीछे पड़ा था कि सफेद कपड़ा है और उसके ऊपर एक नुक्ता लग गया तो वो बॉर्डर करता रहेगा, उसके ऊपर चैन नहीं मिलेगा आप इसको। अल्लाह ताला हमें भी ऐसा बना दे कि हम गुनाह करें ना, इल्म और इरादे से गुनाह करना छोड़ दें, लेकिन अगर कभी हो जाए तो हमें चैन ना आए जब तक कि अपने परवरदिगार से उसको माफ ना करवा। यही तो हमारा मकसद है जिंदगी है, इसी को बंदगी कहते हैं। यहाँ पे हम क्लास खत्म करते हैं, वह आखिर गुना दूसरे गुनाह को अट्रैक्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली ठीक है।